अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
तो हमने पिछले चैतन्य भागवत के रीडिंग में सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग में प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन शुरू करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी शुरू होने वाला था। प्रतिदिन भक्त जाते हैं या जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। और ये पहला ही दिन था कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे वैष्णवों के संग में, और सारे वैष्णव और चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, गा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कई सारे कृष्ण भक्ति के जो लक्षण है वो प्रकट करने लगे और जोर जोर से हुंकार करने लगे, गर्जना करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो इस प्रकार से उनके इस प्रेम विकारों का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं और आगे कहते हैं, अपूर्व देखिया सब भागवत गने नर ज्ञान आरक्य ना कर मने। तो इस प्रकार की जो अपूर्व दशा चैतन्य महाप्रभु की सब भक्त देख रहे थे और उनके मन में वो सोच रहे थे कि ये जो निमाए हैं ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। कह भले ये पुरुष अंश अवतार, कह भले ये शरीर है कृष्ण रविहार। तो कुछ लोग सोचने लगे या बोलने लगे, ये तो कृष्ण का या ये अंश अवतार है या फिर इसके शरीर में कृष्ण प्रकट हो गए हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दशा को प्रकट कर रहे हैं। कह भले के बाशु का प्रहलाद नाराद, कह भले है न बुझी खंडिल आपद। तो कोई कहने लगा कि ये तो शुकदेव गोस्वामी है या तो ये प्रहलाद है या नारद है, और कोई कहने लगा कि अच्छा हुआ इसके ये कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहा है, इसके कारण हम सबके जो आपदाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो भक्तों के लिए दुख क्या था कि उनको उन्नत भक्तों का संग नहीं मिल रहा था और बाकी नवद्वीप में सारे जो निंदक हैं, द्वेषी हैं, वो वैष्णव की बहुत मजाक करते थे, निंदा करते थे, इसलिए वैष्णव लोग दुखी थे। ये तो सब भागवत गनेर गृहिणी तारा बले कृष्णा से जन्मिला आपनी। तो जो जितने वैष्णव थे उनकी जो पत्नियां थी वो कहने लगी कि हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने ही जन्म लिया है इस निमाय पंडित के रूप में। कह भले यही बुझी प्रभु अवतार, यही मत मने सबे करे न विचार। तो कोई कहने लगे कि मुझे लगता है कि प्रभु ने ही या कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया है, और इस प्रकार से सब लोग मन ही मन विचार करने लगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। बाह्य है ले ठाकुर सवार गला धरे, जे क्रंदन करे ताहा कहे तेना पारे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाय पंडित जैसे अपने बाह्य दशा में आए तो वो रोने लगे और फिर भक्तों का गला पकड़ने लगे। जैसे हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तो किसी भक्त के गले को पकड़ते हैं, उसके गले में गला डाल के रोते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण करणामृत का एक श्लोक का उच्चारण करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु बोला करते थे। अमुन्य धनानि दिनांतरानि हरे तदा लोकम अनंतरे अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत हाहंत कथम नयामि। तो उसका अनुवाद है कि हे गोपियों के चित्त को चुराने वाले, हे अबलाओं के बांधव, हे दया के सागर श्याम सुंदर, हाय हाय तुमको न देखकर तुम्हारे विरह में इन दिनों को मैं कैसे बिताऊं बताऊं। तो ये श्लोक कृष्ण करणामृत नाम का जो ग्रंथ है बिल्व मंगल ठाकुर ने इसकी रचना की थी। तो कृष्ण करणामृत का अर्थ क्या है कि यह श्लोक इतना मधुर है ये जो ग्रंथ है कि कृष्ण के कानों को भी आनंद देता है अमृत के समान। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो दो ग्रंथ उनको मिले थे केशव मंदिर में। एक तो ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय जो हम आजकल पढ़ते हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने लाया है और कृष्ण करणामृत। तो ये दो पुस्तकें महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा से अपने साथ लाए थे जगन्नाथपुरी में और वो केवल एक एक कॉपी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक एक वो कॉपी अपने भक्तों को दी और सबको कहा कि आप उसकी जेरॉक्स बनाओ। मतलब उस समय जेरॉक्स क्या था, हाथ से ही लिखना पड़ता था। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि उन ग्रंथों को भक्तों ने हर एक ने कॉपी करके अपने पास रखा और सबने मुखस्त कर दिया। हाँ मतलब कृष्ण करणामृत और ब्रह्म संहिता हर भक्त के मुख में थी, कंठ में थी, हाँ बिल्कुल याद थी उन सबको और भक्त बहुत आनंद से गाते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु यह विरह प्रकट करते हैं जो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण मथुरा जाने के बाद प्रकट किया था वृंदावन में। कोथा गेले पाय मुसे मुरली वदान बलिते छाड़े श्वास करे कंदन। तो निमाई पंडित कहने लगे कि कहाँ गए मेरे जो मुरली वदन है, या मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके मैं उनको प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से बहुत लंबी लंबी सांसें लेकर जोर जोर से रोते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कह रहे थे। सिरहाय प्रभु सब आप्त गण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदने। तो निमाय पंडित शांत हो जाते हैं और अपने जो आत्मीय भक्त हैं, जो सबसे नजदीक भक्त हैं, उनको अपना जो दुख है वो कहने लगते हैं। तो उनके जीवन का दुख क्या था, प्रभु बोले मोर से दुखेर अंत नाय पाया वो हराई नो जीवन का नाय। कहते कि मेरे जीवन में दुख का अंत नहीं है और मेरे जीवन में दुख क्या है कि जो प्राण नाथ या प्राण के समान जो कनाई है, कनाई मीन्स कन्हैया या कृष्ण, वो लॉस्ट हो गए हैं, गुम हो गए हैं मेरे जीवन में। सबर संतोष है रहस्य सुनिते, श्रद्धा करी सबे बसी लेना चारी भीते। तो ये सुनकर सारे भक्तों को बहुत आनंद हो गया और निमाई पंडित को चैतन्य महाप्रभु को बीच में बिठाकर सारे वैष्णव उनको राउंड करके बैठ गए थे उनकी बातों को सुनने के लिए। क्योंकि आज तक किसी ने इस प्रकार के जो कृष्ण भक्ति के जो लक्षण है उनको प्रकट नहीं किया था और किसी ने भी इस बातों का वर्णन नहीं किया था कि मुझे विरह हो रहा है कृष्ण से, तो कृष्ण से अधिक प्रेम हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि हमें सेपरेशन महसूस होना चाहिए कि सही में मैं कृष्ण से बहुत दूर आ गया हूँ इस जगत में। प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी को पता करना है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हूँ या नहीं, तो प्रभुपाद कहते कि ये बहुत सरल है, किसी के पास जाकर पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके गुरु तो बता ही देंगे, लेकिन आपके हृदय में लस्ट और ग्रेड काम और लोभ कम हो रहा है या कम हो गया है जितनी मात्रा में, तो उतना समझना चाहिए कि मैं कृष्ण भावना में उन्नति कर रहा हूँ। तो निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार इस प्रकार के लक्षणों को प्रकट किया और इस बात को बताया विरह को। कानाईर नटशाला नामे एक ग्राम गया है ते आती तू देखी नु सही स्थान। तो महाप्रभु अभी बताते हैं वो गया गए थे तो उस समय उनसे कैसे वो गुम हो गए कृष्ण और वो कौन से कृष्ण थे उसका वर्णन करते और इतना सुंदर वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि सारे भक्त उनको सर्कल करके बैठे थे और एक प्रकार से निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु गोपी के भाव में है या श्रीमती राधा रानी के भाव में है और उनके भक्तों को, क्योंकि महाप्रभु के भक्तगण वैराग्य प्रधान है या महाप्रभु भक्तगण पांडित्य, ये दो चीजें थी। महाप्रभु के भक्त को ऐसे अनपढ़ नहीं थे, गवार नहीं थे, जिनको कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का पता नहीं है, शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, हाँ, इसलिए महाप्रभु के भक्त देखो एक 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 गोस्वामी कितने पंडित हैं, प्रभुपाद जी देखो अभी जो भक्त हैं, तो ये कोई सामान्य भक्त नहीं है। तो महाप्रभु गोपी के भाव में आकर हाँ उन सब भक्तों को अभी बता रहे हैं अपने जीवन का दुख कि मेरे हृदय में एक चीज थी जो कृष्ण मुझे मिले थे वो गुम हो गया है, और कब गुम हो गया है और वो कैसे थे उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कानाईर नटशाला नामे एक ग्राम, कानाई नटशाला नाम का एक गांव है, आज भी आप बंगाल में जाते हैं तो गंगा के किनारे वो कानाई नटशाला है और इतना सुंदर है। बीटीजी में आर्टिकल आया था कि वहां काफी सारे मगरमच्छ हैं, मगरमच्छों की गुफाएं हैं। सच्चिदानंद महाराज उन मगरमच्छ की गुफाओं में जाके जप करते थे, कई दिन वो रहे वहां कान्हा नटशाला में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बीटीजी में। तो वो वास्तव में सुंदर है, और महाप्रभु जब पहले बार वृंदावन गए थे तो वहां से वो वापस आ गए थे कन्हैया नटशाला से। तो कहते कि मैं जब गया के लिए जा रहा था तब जब मैं आया तो वो स्थान को देखकर आया। निमाई कहते हैं तमाल श्यामल एक सुंदर बालक, तो कहते कि वहां कैसे बालक देखा मैंने, तमाल, तमाल वृक्ष देखा है ना आपने, ब्लैक सा है। तो तमाल श्यामल एक सुंदर बालक नवगुंजा सहित कुंतल मनोहर, और उनकी गुंजा माला उन्होंने धारण की है और उनके बाल बहुत सुंदर हैं। तो ये तमाल वृक्ष विशेष है, आप देखो वृंदावन में तीन ही तमाल वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ कृष्ण की रास स्थली है केशी घाट के आसपास, और एक इस्कॉन है और एक याद नहीं आ रहा है मुझे, तो तीन ही है। जब इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद ये तो काटना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा नहीं हाँ ये विशेष है क्योंकि ये कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, और श्रीमती राधा रानी को तमाल वृक्ष बहुत प्रिय है। जब कृष्ण का विरह अनुभव हुआ श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण जब मथुरा चले गए तो श्रीमती राधा रानी तमाल वृक्ष को देखकर कृष्ण का स्मरण हो जाता था, रोती थी और वो कहती थी यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप मुझे तमाल वृक्षों को बांध के डाल, बांध के वहां ही रख दो, मेरे बॉडी को ऐसे बांध दो, तमाल वृक्ष में पकड़ूंगा और रस्सी से पूरा बांध दो। तो इस प्रकार से यार कृष्ण को कदम्ब का वृक्ष देखकर श्रीमती राधा रानी का स्मरण होता है। हमारे मंदिर में दोनों वृक्ष है, आप यहाँ देखो तमाल है प्रसाद हॉल के सामने साइड में और इस तरफ कदम का है। तो इस प्रकार से ये कृष्ण का ये वर्ण है। तो प्रभुपाद जब आते थे कृष्ण बलराम मंदिर में तो प्रभुपाद ने देखा कि तमाल वृक्ष बहुत फूल रहा है, मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, उसको काफी टहनियां आ रही है, पत्ते हरे भरे हो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये लक्षण है कि हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में हम भक्त आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद, और प्रभुपाद का वीडियो उस दिन हमने देखा, उस तमाल वृक्ष के नीचे बैठ के वो हिंदी पढ़ाते थे या फिर वहां दर्शन देने के लिए बैठते थे। हाँ राज श्याम सुंदर के सामने ही है वो वृक्ष साइड में। विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरी झलमल मणिगण लखित न पारी। तो आप देखो कितना अच्छा भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके मुखकमल का वर्णन किया, और कहते कि मयूर पुच्छ शोभे तदुपरी, मयूर पुच्छ ऊपर शोभा पा रहा है कृष्ण के उस मुकुट के ऊपर, झलमल मणिगण लखित न पारी। तो कहते कि वो जो मणि झलमल हो रहा था और किसी के व्यक्ति व्यक्ति की जो दृष्टि है वो ठहर नहीं पाती, भगवान इस प्रकार से वो मालाएं धारण किए थे। हाथे ते मोहन वंशी परम सुंदर, हाथे ते मोहन वंशी परम सुंदर, चरणेनु पुर शोभे अति मनोहर। सौंदर्य का वर्णन, हाँ उनके हाथ में बंसी है और इतने मोहित करने वाले, और कृष्ण इतने सुंदर हैं और उनके चरणों में नुपुर है, और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी वही कहा जाता है चरणे नुपुर बाजे। गौरांग महाप्रभु सुबह उठते थे अपने भक्तों को लेते थे और निकलते थे हरि नाम करने के लिए, उदिलो अरुण पूरब बागे, पूर्व की दिशा में जब अरुण सूर्य उदित होता था साठ चैतन्य निकलते थे, तो उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया है। तो ये विशेषता है बंगाली भाषा की, क्या विशेषता है कि जो कठिन सब्जेक्ट है हमें वैसे स्मरण नहीं होगा भगवान के सौंदर्य का वगैरह, ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बंगाली सॉन्ग या ये प्यार जो दिए हैं आचार्य ने, उनको हम सीखते हैं या उसको स्मरण करते हैं तो आपको भगवान का पूरा सौंदर्य का स्मरण रह सकता है। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार श्रीवत्स कौस्तुभ वक्ष शोभे मनिहार। तो आगे वर्णन करते हैं कि नील स्तंभ सदृश भुजाओं पर रत्नों के अलंकार और वक्ष स्थल पर श्रीवत्स कौस्तुभ मणि और मणि के हार शोभा दे रहे हैं। मकर कुंडल शोभे कमलन की कही वसे पित धटीर परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयान अमर समीपे आयला हसते हसते अमालिंगिया पलायला गुन भीते। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके गले में मणियों का हार शोभा दे रहा है और उन्होंने कसकर पीताम्बर धारण किया है भगवान ने, और कानों में मकरा, मकर मीन्स मछली का जो मकर कुंडल शोभे उनके कानों में है। इस प्रकार से और उनके नेत्र कमल के सदृश हैं। ऐसे कृष्णा, मैं जब गया से वापस आ रहा था तो हंसते हंसते आए और उन्होंने मेरा आलिंगन किया और पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसलिए आप देखो यहाँ उस रहस्य को वर्णन करते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने कई जगहों में, हमने पीछे पढ़ा कि हर बार कहते कि मुझे ऐसा धन प्राप्त हुआ जो चला गया, लॉस्ट हो गया मेरे पास से। तो वो धन क्या था? ये था जब वो गया से वापस आए थे और उनको कृष्ण साक्षात उनको नजर आए, उनके सौंदर्य को उन्होंने देखा, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे अपने सारे भक्तों को गोल बिठा कर बीच में बोल रहे महाप्रभु। और फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे आए और मेरा आलिंगन किया हंसते हंसते और फिर अचानक भाग गए, कहाँ चले गए। तभी कहते हैं कि रूपे कहे न कथा श्री गौर सुंदरे तान कृपा बिना तहा के बुझते पारे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये गौरांग महाप्रभु हैं जो किस भाव में ये सब बातें कह रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, केवल वो व्यक्ति इनके दिव्य कार्यकलापों को या उनकी बातों को समझ सकता है जिसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा करेंगे। कहते कहते मूर्छा गेला विश्वम्बर। तो ये बोलते बोलते कृष्ण का इस प्रकार का वर्णन करते करते वो मूर्छित हो गए। पड़े लाहा कृष्ण बले पृथ्वी ऊपर, और हा कृष्ण कहते हुए विराह में इस प्रकार से हा कृष्ण कहते हुए जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। आते वे ते धरे सब कृष्ण कृष्ण बले सिर करी झाड़ी ले ला श्री अंगेर धुली। तो सब लोगों ने जैसे वो गिर गए और पछाड़ गिर पड़ते थे तो सब भक्तों ने उनको पकड़ा और उनके शरीर के ऊपर जो धूल वगैरह लगे थे सारे भक्तों ने उस धूल को हटा दिया। स्थिर है आओ प्रभु स्थिर नाई है, मतलब स्थिर कर रहे थे भक्त लोग उनको पकड़ के, लेकिन भी वो स्थिर नहीं हो रहे थे। कोथा कृष्ण बलिया कांदाय, कांदाय मीन्स रो रहे हैं, कोथा कृष्ण कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का इतना अनुराग वो प्रदर्शित कर रहे थे। ये सब चीजें क्या है, वो भक्त के रूप में आए हैं और ये भक्ति की सर्वोच्च सीमा है। किसी भक्त का भगवान के प्रति सर्वोच्च अनुराग होता है तो उसकी ये सर्वोच्च सीमा चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रकट कर रहे हैं। क्षण के हैला स्थिर श्री गौर सुंदर स्वभाव हैला अति नम्र कलेवर। तो फिर वो बाह्य दशा में आते हैं और वो स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाते हैं और बहुत ही विनम्र हो जाते हैं। तो ये स्वभाव है भक्त का कि कोई भक्त चाहे कितने उसमें गुण क्यों ना आ जाए या वो कितना ही फेमस क्यों ना हो जाए, वो कितना अच्छा बजाता क्यों ना हो, कितना अच्छा गाता क्यों ना हो, कितना अच्छा प्रवचन देता क्यों ना हो, लेकिन एक गुण क्या है जो चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित करता है, वो है विनम्रता। तो किसी व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो रही है, कृष्णदास कविराज कहते हैं, तो ये कैसे पहचानना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर विनम्रता गुण आ रहा है जिस भक्त के अंदर, तो वो समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के उसके ऊपर कृपा हो रही है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु इतने सारे कीर्तन में अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के सामने या भक्तों के बीच बहुत विनम्रता उनकी ये जो लक्षण है वो प्रकट होता है। परम संतोष चित्त है लसबार सुनिया प्रभु र भक्ति कथा र प्रचार। तो अभी एक प्रकार से पहली बार उन्होंने कृष्ण कथा की थी चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के संग में, तो सारे भक्तों ने सुन के बहुत अधिक आनंदित हो गए और संतोष उनको फुल्ली सेटिस्फेक्शन अनुभव हुआ। हाँ, संतुष्टि। सबे बोले हमारा सवार बड़ा पुण्य तुम्हें है न संगे हबे हई लाओ धन्य। तो सारे भक्त बोलने लगे कि हम सब बहुत पुण्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे भक्त हमें संग मिल रहा है। तुम्हें संगे जा रहा तारा वैकुंठे की करे। कहते आप जैसे भक्त का जिसको संग मिल रहा है उसको वैकुंठ की क्या आवश्यकता है, वैकुंठ जाने की जाकर क्या करेगा व्यक्ति। हाँ, तो यह है मतलब भक्तों का जो संग है उसकी महिमा का यहाँ जो भक्त लोग वर्णन करते हैं। तिलक तुम्हारा संगे भक्ति फल धरे, और कहते कि आपका केवल तिल मात्र संग करने से भक्ति फल धरे, भक्ति फल फुलित होती है। अनुपल्य तुम्हारा आमरा सर्वजन सवार नायक है करह कीर्तन। तो फिर सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि अनुपाल्य में जैसे पालक होता है, पालक उसे कहते हैं जो उसके आश्रित लोग होते हैं उनका पालन करता है, जैसे माता पिता पालक हैं अपने बच्चों को पालन करते हैं। तो सब भक्त कहने लगे कि हम तो आपके आश्रित हो जाएंगे और आप लोग मतलब आप है निमाए, आप क्या करो हमारा पालन करो और आप हम सबके लीडर हो, नायक हो, कीर्तन के नायक। पाषाणीर वाक्य दग्ध शरीर सकल तुम्हारा ये प्रेम जले कर शीतल। तो उन्होंने कहा कि आज तक ये जो पाषाणी है, निंदक है, जो भक्तों से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, उनके वाक्यों से हमारा शरीर जल रहा था, दग्ध हो रहा था, लेकिन आपने ये जो प्रेम प्रेमा भक्ति की जो वर्षा की है उसके कारण अभी हम शीतलता अनुभव कर रहे हैं। संतोषे सवार प्रति करिया अश्वा चले लेना मत प्राय निजवास। तो इस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु जो उन्मत्त सिंह के समान है वो अपने घर को चले जाते हैं। ग्रहे आए ले वो नाये व्यवहार प्रस्ताव निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। तो अभी उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था, क्योंकि निमाय पंडित तो गृहस्थ थे लेकिन घर आने के बाद गृहस्थ जैसा कर्म वो नहीं कर रहे थे। वो अभी बिल्कुल ही हर समय कृष्ण भक्ति में मग्न रहते थे। कतवा आनंद धारा बहे श्री नयने चरणेर गंगा की बा आई लावदने। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इतनी सारी चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से आनंद की धारा बहती थी, तो ऐसे लगता था कि जो गंगा चरणों से निकलती है वो अभी यहाँ से निकल रही है, आंखों से और मुंह से निकल रही है। गोथा कृष्ण मात्र प्रभु बले आर के कथा ना है पाया जिज्ञास ले। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि हर समय उनके मुंह से इसी बात निकलती थी, गोथा कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण, और कोई भी चीज उनके मुंह से निकलती नहीं थी और कोई व्यक्ति कुछ भी पूछता था उसको उत्तर यही मिलता था कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण। तो ये फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस थे, मैड कृष्ण के लिए पागल होना। हाँ, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गए थे और कई बार वो घर छोड़ छोड़ के भागते थे। हाँ, लेकिन उनके पिता वगैरह उनको बांध बांध के रखते थे। जय वैष्णव ठाकुर देखे न विद्यमाने तहारे जिज्ञासे न कृष्ण को न खाने। तो निमाय पंडित कोई भी वैष्णव उनको मिलता था या दिखाई देता था तो उसको पूछते थे कि कृष्ण कहाँ है। एक ही उनके पास प्रश्न था, हाँ एक ही, कोई और प्रश्न उनके पास नहीं था। हाँ तो एक विशेष लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन तांबूल लैया गदाधर हरिषे आइला ते प्रभु रघुचर। तो एक दिन बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित अपने हाथ में तांबूल लेकर आए, तांबूल पान लेकर आए और निमाई के घर में आए। गदाधर देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्णा छे न श्यामल पितवासा। जैसे वो आ गए सची माता के घर में गदाधर पंडित अपने हाथ में पान लेकर, तो निमाय पंडित उनको प्रश्न पूछते हैं कि कोथा कृष्ण आछे न श्यामल पितवासा, कि कृष्ण कहाँ है जो श्यामल वर्ण के हैं और जिन्होंने पितवासा पीले कलर के वस्त्र धारण किए हैं, वासा में कपड़े। से अर्थ देखिते सर्व हृदय विदरे कि बोल बले बेह न वचन नास्कुरे। तो क्योंकि महाप्रभु कोई ऐसा मजाक में नहीं, उनके हृदय में वास्तव में दुख, जैसे किसी व्यक्ति बहुत दुखी होता है, वो जब दुख के साथ वो बात करता है तो उसकी बात को सुन के हमें महसूस होता है कि ये व्यक्ति के हृदय में बहुत दुख है। तो ऐसे दुख पूर्ण वाणी से चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है जो श्यामल वर्ण के हैं जिन्होंने पीताम्बर धारण किया है। तो अभी ये एंट्री कर रहे थे और अचानक इन्होंने पूछा तो ये वैसे ही डर गए कि अभी क्या उत्तर दूं, इनके मुख से निकल नहीं रहा था। संभ्रमे बलेन गदाधर महाशय निरवधि था के कृष्ण तुम्हारा हृदय। तो उन्होंने संभ्रम मतलब बहुत जल्दी से बोल दिया गदाधर पंडित कि कृष्ण कहाँ है, आपके हृदय में है। तो फिर वो कहते हैं हृदय आछे न कृष्ण वचन सुनिया आपन हृदय प्रभु चिरे नख दिया। जैसे हनुमान जी अपना छाती फाड़ के दिखा रहे थे सीता देवी को, देखो जब उन्होंने उनको वो मोतियों की माला दी थी सीता देवी ने गिफ्ट, सबको तो पूरा जैसे मैराथन के बाद हम गिफ्ट देते हैं, तो इनका मैराथन तो बहुत लंबा था बंदरों का, वो रावण के साथ इतना युद्ध किया। तो राम जब अयोध्या आए तो सबको सब कुछ दिया, लेकिन राम ने जानबूझ के इनको कुछ भी नहीं दिया हनुमान को, लेकिन सीता को बड़ा क्रोध है क्या इनको कुछ नहीं दिया, मैं देती हूँ। तो इन्होंने वो मोतियों का हार दिया और वो भक्तपुर क्या करना है उस मोतियों का हार, वो दांत में डाल के तोड़ते जा रहे हर एक मोती। तो हर कोई सोच रहा है कि ये बंदर ये हनुमान पागल हो गया शायद, इतने महान मोतियों के हार जो सीता देवी ने धारण किया था इतने महंगे चीज को ये बिल्कुल तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कहते हैं हाँ कि मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर राम है क्या, तो कहते इसमें राम नहीं है। तो फिर भगवान हनुमान जी अपने छाती खोलते हैं कि देखो यहाँ है जो राम दिखाते हैं। इस प्रकार से जैसे गदाधर पंडित ने बोला कि कृष्ण निरवधि था के कृष्ण तुम्हारा हृदय, हर समय कृष्ण आपके हृदय में है। तो जैसे उन्होंने ये बोला तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उस वचनों को सुना तो अपने नाखून अपने छाती को फाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे फाड़ने लगे कि कृष्ण मिल जाएंगे इस हृदय में। आते व्यते गदाधर दुई हाथे धरी नाना मते प्रबोधे राखिला सिर करी। तो गदाधर पंडित ने उनको पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ लिए और स्थिर किया तो वो स्थिर हो गए। और फिर गदाधर पंडित कहते हैं यही अस्ति वेन कृष्ण स्थिर हो मने गदाधर बोले आई देखे न आपने। तो कहते कि कृष्ण आएंगे, अभी कृष्ण आएंगे, आप स्थिर हो जाओ शांत हो जाओ। तो ये सब घटना सची माता देख रहे थे, क्योंकि सची माता इतना डरती थी निमाय से, जब इस प्रकार की पागलपन की हरकतें करता था तो सची माता नजदीक नहीं जाते थे, बहुत भय लगता था। तो लेकिन देखा कि ये छोटे से बालक गदाधर ने इसको शांत किया है, तो सची माता कहती है बड़ा तुष्ट हैला आई गदाधर प्रति एमत शिशुर बुद्धि नाई देखी कते। तो सची माता बहुत संतुष्ट हो जाती है और वो कहती है कि मैंने ऐसा बुद्धिमान बालक आज तक नहीं देखा है, क्या किया इसने, मुई भय नाही पारी सम्मुख हाय ते शिशु हाय के मन प्रबोधिल भाल मते। कि मैं तो भय के कारण इस निमाय के पास नहीं जाती, लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी ये निमाय को अच्छी तरह से समझाता है, प्रबोध दिलाता है। आई बले बाप तुम्हें सर्वदा था कि बा छाड़िया उहार संग कोथा ना जाए बा। आई कहती है कौन? सची माता। तो आई शब्द बंगाली में आता है और मराठी भाषा में भी, जैसे लोग हिंदी में मम्मी कहते हैं, तो मराठी में माँ को आई कहते हैं। तो ये महाप्रभु सची माता को आई कहते थे जब नवदीप में होते थे, तो ये वर्ड यूज करते थे हर समय, जैसे माँ कहते हैं है ना हिंदी में। तो आई कहे मतलब ये सची माता कह रही है, बाप तुम्हें सर्वदा था कि बा कि हे गदादर तुम ये निमाय के साथ हर समय रहो, छाड़िया उहार संग कोथा ना जाए बा, और इसका संग छोड़ के आप कहा भी मर जाओ। तो इससे हम देखते हैं गदादर पंडित निमाय पंडित के हर समय छाया के समान उनके साथ रहते थे। जब वो जगन्नाथपुरी भी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर गए, हम आगे पढ़ेंगे कि संन्यास से पहले गदाधर पंडित को उन्होंने बोला, गदाधर पंडित बहुत डांटने लगे, तुम अपनी माँ को तो क्या मरवा रहे हो इस प्रकार से संन्यास खुद लेकर। महाप्रभु के बहुत वो जो वर्डिंग बोला उन्होंने कि मैं संन्यास ले जा रहा हूँ, संन्यास शब्द नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा मैं शिक्षा और जनेऊ का त्याग करने जा रहा हूँ। क्योंकि मायावादी संन्यास में क्या होता है, शिक्षा नहीं रखते मायावादी, और ये तो ब्राह्मण थे, नवदीप में सब ब्राह्मण के बच्चे सारे यज्ञ सूत्र रखते थे और शिक्षा रखते थे। तो कोई व्यक्ति ये दो चीजें नहीं रखेगा तो इसका मतलब वो संन्यास करने संन्यास लेने जा रहा है, उस समय केवल मायावादी संन्यास था। तो केशव भारती माधवेंद्रपुरी के शिष्य है जिनसे उन्होंने संन्यास लिया, और जो जिन्होंने दीक्षा लिया हरिनाम दीक्षा किनसे लिया था, ईश्वरपुरी से, दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो आप देखो माधवेंद्रपुरी कितने महान वैष्णव हैं। तो नहीं एक्चुअली क्योंकि उस समय वैष्णव इसमें संन्यास नहीं था, तो भारती मायावाद से संन्यास लिया करते थे, लेकिन वो वैष्णवी थे, संन्यास केवल स्वीकार करते थे शंकराचार्य के संप्रदाय से। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ जो गदाधर पंडित हैं वो हर समय रहते थे, और सची माता ने कहा था कि इस मेरे बालक को आप छोड़ के मत जाना। तो गदाधर पंडित चाहे जगन्नाथपुरी भी गए तो भी वहां भी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, और चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन जाने के लिए निकले तो अभी गोपीनाथ ना आपने गदा उस दिन सुना होगा गदाधर पंडित का जो आविर्भाव दिन था, तो टोटा गोपीनाथ की सेवा छोड़कर भी वो महाप्रभु के साथ निकलते हैं कि मेरा क्षत्र संन्यास नरक में चला जाए, वो कहते हैं जाए रसातल। और वो कहते गोपीनाथ की सेवा, कहते आपके चरणों को देखकर हजारों बार गोपीनाथ की सेवा हो सकती है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो महाप्रभु कहते मेरे साथ मत आना, तो इनको इतना गुस्सा आता है गदाधर को, कहते कि आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं नवदीप जा रहा हूँ, तुम जाओ वृंदावन। और कहते कि मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कैसे जा रहे थे दोनों रास्ते में, रास्ते के एक किनारे से महाप्रभु चलते थे और एक किनारे से गदाधर पंडित, कहते मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, देखो अलग अलग जा रहे हैं। तो महाप्रभु को बहुत हृदय में तो बहुत आनंद हो रहा था कि देखो कितना इसका प्रेम है मेरे प्रति, क्योंकि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है। और फिर जब कटक में आते हैं, भुवनेश्वर से आगे एक स्थिति आता है कटक, और आपको कटक में जाना होता है तो महानदी आता है बीच में, तो महाप्रभु को उस नदी को पार करना था, तो महाप्रभु एक नाव में बैठ गए और गदाधर पंडित की भी इच्छा थी कि अभी मैं भी बैठूंगा, लेकिन महाप्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, कहा गदाधर, और अभी प्रेम से नहीं बोले महाप्रभु, महाप्रभु गुस्सा करना भी जानते थे, डांटना जानते थे, अपनी सेवा छोड़ के मेरे साथ जाना चाहते हो, ये इंद्रिय तृप्ति है, कहते तुम्हें जो सेवा दी है गोपीनाथ की वहां सेवा करना, और तुम्हारे तुमने जो व्रत लिया है क्षेत्र संन्यास, हाँ मेरे कारण तुम ये कर रहे हो, तो महाप्रभु का उनका हाथ पकड़ते और डांट के भगा देते कि जाओ, और अपनी नौका चला देते हैं और इनको अकेले छोड़ देते हैं वहां। फिर ये इतना दुखी हो जाते गदाधर पंडित, महानदी के किनारे वो रोने लगते हैं जोर जोर से और गिर पड़ते हैं। फिर सारा भट्टाचार्य उनको पकड़ के ले जाते हैं, है। देखिए महापुरुष का स्वभाव ऐसा ही है। इस प्रकार से सच्ची माता ने पहले से ही कहा था कि हे गदाधर, इसका निमाय का संग कभी उन्हें छोड़ना, उसके संग में हर समय रहना, क्योंकि तुम जानते हो इसको शांत करना। तो पूरे चैतन्य लीला में गदाधर पंडित आगे भी निमाय पंडित के साथ रहते हैं। और निमाय पंडित का इतना प्रेम गदाधर के प्रति था कि आपने जो अप्रकट लीला है उनके विग्रह में करते हैं टोटा गोपीनाथ में। तो चैतन्य भागवत के श्रील वृंदावन दास ठाकुर के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद चैतन्य।